धरती पर असंख्य जीव पैदा होते हैं। कोई राजा होता है तो कोई रंक होता है तो कोई सामान्य होता है तो कोई कुछ विशेष होता है, लेकिन असंख्य जीव पैदा हो होकर मर मिट जाते हैं। उनके नाम को, उनकी स्मृति को याद स्मरण करके लोग नतमस्तक नहीं हो पाते हैं, नहीं होते। लेकिन जो कुछ गिने गिनाए लोग हैं, जैसे भीष्म हैं, हरिश्चंद्र है, भरत हैं, शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, मीराबाई है, एकनाथ जी है, शिवाजी महाराज है, तोतापुरी जी हैं, रामकृष्ण हैं, जिन्होंने अपने मन को, अपने इंद्रियों को संयत किया है और जिन्होंने अपने को विकारों से बचाकर निर्विकारी नारायण सुख का प्रसाद पाया है, ऐसे लोग चाहे इस देश को हो चाहे परदेश के हो, उनको समाज ने खूब मान से याद रखा है। सोक्रेटिस को याद रखा है लोगों ने, महात्मा थोरो को याद करते हैं लोग, जीसस को लोग याद करते हैं, धन्ना जाट को लोग याद करते हैं और वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और दूसरे आत्म परमात्मा में विश्रांति पाए हुए पुरुषों को हम बड़े आदर से याद करते हैं। फिर चाहे शबरी भीलन हो, चाहे रोहिदास चमार हो, चाहे गार्गी हो, चाहे राजा जनक हो, एकनाथ हो या एकलव्य हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयत किया है, ऐसे पुरुषों का चीर स्मरण समाज में रहता है। साधारण लोग पैदा होकर मर जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इंद्रियों को वश करके मन को परमात्मा में लगाया है या लगाने का दृढ़ प्रयत्न किया है, ऐसे लोग जन्म कर मर नहीं जाते, जन्म कर अमर आत्मा की ओर चल जाते हैं और संसार में अपनी मधुरता, अपनी शुभ कीर्ति छोड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को भगवत गीता के चौथे अध्याय में, 12वां अध्याय चौथा श्लोक में कहते हैं, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझी को प्राप्त हो जाते हैं। भगवत गीता 12वां अध्याय का चौथा श्लोक है। संनियमेन्द्रिय ग्रामम, संनियमेन्द्रिय ग्रामम, संनियमेन्द्रिय ग्रामम, संनियमेन्द्रिय ग्रामम, सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र संबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते। इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझी को प्राप्त होते हैं। मनुष्य को विकारी आकर्षण ने तुच्छ बना दिया है। जिनके जीवन में संयम है, नियम है, ऐसे इंद्रियों को संयत करने वाले लोग, सब भूतों के हित में रमने वाले लोग, संभाव से मति को सम रखने वाले, मति के उस उच्च अनुभव से वे मति दाता में प्रतिष्ठित होने की योग्यता पा लेते हैं और वो योग्यता पाने वाले फिर भगवान को प्राप्त कर ले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। वो आदमी जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा चाहिए अथवा अनपढ़ चाहिए, बहुत धनवान होना चाहिए या निर्धन होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए या जवान होना चाहिए या बूढ़ा होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे परदेश जाना हो तो यहाँ आपका कुछ अकाउंट होना चाहिए, टिकट के पैसे होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर आदमी परदेश जाता है, 6-12 महीने में वहां से धकेल दिया जाता है अथवा तो लागवक करके इस देश को छोड़कर वहां का नागरिक बनता है। लेकिन जिसने इंद्रिय ग्राम को जीता है उसको न कोई देश छोड़ना है न कहीं की गुलामी करना है, वो तो सर्वत्र समबुद्धय हो जाता है, सर्वत्र उसकी समबुद्धि हो जाती है, उसके लिए पराया और अपना भेद क्षीण होने लगता है, उसके लिए इहलोक और परलोक की सत्यता मिटने लगती है, उसके लिए राग और द्वेष मन की कल्पना और विकारों का आवेश मात्र लगता है, वो भूत मात्र के हित में लगा पुरुष मुझी को प्राप्त कर लेता है। भगवत प्राप्ति में अगर बड़े में बड़ी रुकावट है तो वही है कि इंद्रियों के सुख का आकर्षण। जो संयमी पुरुष है वो इंद्रियों के सुख के आकर्षण से अपने को संयत करता है। जीवन में अगर संयम नहीं होगा तो जीवन न जाने कौन सी गर्ताओं में जा गिरेगा। वृक्ष अगर कहे कि मुझे संयम की क्या जरूरत है, धरती से क्यों बंधा रहा हूं, तो कूदता फिर तेरे फल और फूल नष्ट हो जाएंगे, तेरे पत्ते बिखर जाएंगे, डालियां सूख जाएगी, तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी भैया। वृक्ष अगर धरती के साथ संयत नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, एकाग्रत नहीं है, तो वृक्ष की कोई कीमत नहीं। मूल अगर हिलता डुलता भागता फिरे तो वृक्ष की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही हमारा परब्रह्म परमात्मा रूपी धरती और मन रूपी मूल और इंद्रिय रूपी टहनिया, अगर इंद्रिय रूपी टहनिया थोड़ी बहुत हिलती और मन फिर भी मूल कारण से जुड़ा रहता है तो मन के प्रभाव से हमारे जीवन में सुर भी आएगी, आत्म शांति के फल लगेंगे और आत्मानंद की सुगंध फैलेगी। अगर मन रूपी मूल पर ब्रह्म परमात्मा से हटकर उछल कूद करने लगे तो शुष्कता सा रहेगा और सूखा मन फिर संसार के विकारी सुखों में अपने को भटका भटका कर नष्ट करता जाएगा। जिसने इंद्रिय रूपी ग्राम को जीता है, थोड़ा संयम किया है, वो मुझे प्राप्त करता है, उसका स्वभाव सर्वभूतों के हित में रहता है और बुद्धि समत्व योग में प्रतिष्ठित हो जाती है। अगर वीणा की तार कहे कि हम वीणा से क्यों जुड़े रहे हैं, हमें संयम की क्या जरूरत है, तो फिर ये तार धरती पे पड़े रहेंगे, उनसे कोई मधुर गीत न गूंजेंगे, परमात्मा की प्रार्थना न निकलेगी और लोगों को झुमाने वाले स्वर न निकलेंगे। अगर नदी कहे कि हम किनारों को पकड़कर क्यों चले, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, तो नदी सागर को शायद न भी पहुंचे और रास्ते में ही बखेड़ा कर दे। दोनों किनारों को के संयम में अगर नदी बहती है तो गांवों को लहला बहला देती है, अंत में सागर को मिलती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी संयम के किनारे हो तो मनुष्य जीवन की यात्रा, जीवन की सरिता जीवन दाता रूपी सागर तक जा पहुंचती है। बाष्प अगर बेसंयमी हो तो उसकी कोई कीमत नहीं और बॉयलर में संयत रहती है तो हजारों टन भार को ले भागती। ऐसे ही अपनी वृत्ति अगर संयत होगी तो हजारों विघ्न बाधाओं के बीच भी हम अपनी मंजिल तय करते हैं और दूसरों को कराने में सहभागी होते हैं। तो भगवान कहते हैं संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। इंद्रिय ग्राम को संयत करना, संयत करने का एक आध प्रयोग, दो प्रयोग, चार प्रयोग जान लो और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, साकार में या निराकार में, निर्गुण निराकार अगर बुद्धि की प्रधानता है तो निर्गुण निराकार को मानो, अगर हृदय की भावना की प्रधानता है तो सगुण साकार को मानो। सगुण साकार में भगवान, गुरु, गोविंद, इष्ट, जिसमें भी प्रीति है उसकी प्रतिमा को, मूर्ति को सामने रखो। पूजा के रूम में गुरुदेव की या भगवान की मूर्ति ऐसी रखो जैसे तुम्हारी आंखों के सामने ही वो मूर्ति सिद्ध में आप रखो। न ऊपर देखना पड़े न नीचे देखना पड़े, खुली आंख अर्ध उन्मूलित नेत्रों से उस भगवान या गुरुदेव को निहारो। 5 मिनट केवल प्रयोग करके देखो, थोड़े दिन के लिए बहुत लाभ होगा। 5 मिनट बैठो और देखो, आंख की किकी न चले, आंखें इधर उधर न हिले, चाहे कुछ भी हो जाए, नियत समय पर नियत जगह पर नियमित थोड़े दिन बैठो, इंद्रियों में संयम आने लगेगा थोड़ा बहुत और मन उस मूल में थोड़ा टिकने लगेगा। कुछ दिनों के बाद हृदय में उस परमेश्वरीय आनंद का एहसास होगा, श्रद्धा विश्वास बढ़ जाएगा और बुद्धि में समता आने लगेगी। थोड़ी थोड़ी बात में जो विषम हो जाता है, आदमी खिन्न हो जाता है, वो दुनिया में बड़े काम नहीं कर सकता है। छोटे और बड़े आदमी की पहचान यही है। छोटा आदमी वह है जो छोटी छोटी बातों से जल्दी जल्दी इम्प्रेस हो जाता है, थोड़े से लाभ से बहुत हर्षित हो जाए, थोड़े से हानि से वो बहुत दुखी हो जाए। जैसे बच्चा है तो चवन्नी गिर गई या चॉकलेट किसी ने छीन लिया तो खूब रोएगा, और 4 आने या 8 आने रुपया या 50 पैसे मिले तो बड़ा खुश हो जाएगा। रेती के घरौंदे किसी ने हाथ से तोड़ दिया तो बड़ा नाराज होगा, और किसी ने 4 पैसे का खिलौना दिया तो बड़ा राजी होगा, क्योंकि उसकी बालिश मती है, अल्पमती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो 4 आने या रुपए या 50 पैसे या 2 रुपए की चीज मिलती है तो भी प्रभावित नहीं होता, और 50 पैसे या 100 पैसे की चीज चली भी जाती है तो इतना शोकातुर नहीं होता। ऐसे संसार की कहने वाली बड़ी बड़ी उपलब्धियां अथवा बड़ा बड़ा नुकसान, बड़ा बड़ा मान और बड़ा बड़ा अपमान जिसके चित्त को प्रभावित नहीं करता है, वो संयत समबुद्धि पुरुष सब भूतों के हित में रत रहता है। ऐसे पुरुष के लिए भगवान दूर नहीं और वो भगवान से दूर नहीं। ऐसे पुरुष के तो मुक्ति, 5ों प्रकार की मुक्ति तो उसके मुट्ठी में आ जाती है, और उसकी परवाह न करते हुए कैवल्य मुक्ति का अनुभव करने लगता है। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, स्वर्गीय मुक्ति, ये मुक्ति तो ऐसे पुरुष के लिए कुछ महत्व ही नहीं रखती। वो आत्मवेता जीते जी परम मोक्ष का अनुभव कर लेता है। मुवा पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोइलो नगदी रोकड़ माल। वो नगद धर्म का, नगद आत्म अनुभव का भंडार बन जाता है। ऐसा पुरुष चाहे बयाबान में रहता हो, चाहे भीड़ में रहता हो, चाहे महलों में रहता हो, चाहे झोपड़े में रहता हो, लेकिन वो है तो साक्षात नारायण का अंग। महलों में ऐसे पुरुष जल्दी से बनते नहीं। किसी को ऐसी ऊंची अनुभूति करनी है तो थोड़ा एकांतवास चाहिए, थोड़ा संयम बढ़ाने में सहयोग दे ऐसा पवित्र वातावरण चाहिए। भोगियों के संग में नाहक के विकार पैदा होते हैं, और एकांत में और योगियों के संग में, भक्तों के संग में, संतों के रंग में मन और इंद्रियां सहज स्वभाव, संयम, सादगी, शांति और परमात्मा के रास्ते चलने में सहायक हो जाती है। तो कुछ समय बीते तो एकांतवास 2-4 महीने में एक आध हफ्ता, मौन मंदिर अपने घर में ही बना लो, एक मौन कमरा रखो बस, और किसी से इंद्रियों को बहकाने वाले विषयों से या व्यक्तियों से न मिलेंगे, केवल हम तो परमात्मा चिंतन करेंगे। 2-3 महीने में एकाध सप्ताह अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए निकालें तो बहुत लाभ होता है। इंद्रिय संयम का सुख जगत के सुखों से अनंत गुना ऊंचा है। भगवान शंकर ने कहा गुरु गीता में, न सुखम चक्रवर्तिनः न सुखम देवेंद्रस्य। चक्रवर्ती राजा को वो सुख नहीं उसके भाग्य में, देवेंद्र को विषय सुखों से वो सुख नहीं मिलता जो सुख एकांतवासी मुनि को मिलता है, निर्वासनिक मुनि को मिलता है। वो सुख न राजा इंद्र को है, न चक्रवर्ती सम्राट को है। न सुखम चक्रवर्तिना न सुखम देवेंद्रस्य यत सुखम वितरागस्य मुनिर एकांतवासिनः। तो कभी कभी अपने को शुद्ध पवित्र देश में एकांतवास में लेकर इंद्रिय के आकर्षणों से बचाते हुए थोड़े अंतर्मुख होने का अभ्यास करें तो फिर तुम्हारे लिए समबुद्धि और सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति के द्वार सहज में खुल सकते हैं। आदमी चाहे बाहर से बड़ा हो चाहे छोटा दिखे, चाहे गुरु दिखे चाहे शिष्य दिखे, चाहे सेठ की पदवी पे हो चाहे नौकर की पदवी, जितना उसकी इंद्रिय संयम है और भगवान के प्रति सच्ची मति है, हृदय शुद्ध है, उतना वो जल्दी परमात्म सुख को पा लेता है। विजयकापट्टम दक्षिण भारत की एक घटित घटना है, विक्रम संवत 1900 की। उस घटना के बाद कहावत हो गई, गुरु तो गुड़ रह गए चेला शक्कर बन गया। गुरु तो गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गया। उस घटना के बाद ये कहावत चल पड़ी। विजयकापट्टम के महंत, वहां एक मंदिर था, उस मंदिर के महंत का नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास एक लड़का आया जिसको घर में परेशानी पैदा हुई थी। पिता स्वर्गवास हो गए, काका ने कौवे से भी बदतर कैं कैं चालू कर दी। कभी कभी विघ्न बाधा और विरोधी या दुश्मन लोग भी हमारे सुषुप्त शक्तियों को जगाने में निमित्त होते हैं और हमारे दुख विघ्न बाधाओं को सदा के लिए नष्ट करने का रास्ता दे देते हैं। हालांकि लगता तो ऐसा है कि विरोधी दुश्मन विघ्न बाधा करके हमको सता रहे हैं, लेकिन वे भले बाहर से हमको सताते हुए दिखे लेकिन अंतर्यामी परमात्मा की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि प्रतिकूलता है अनुकूलताओं के द्वार पर ले जाती, दुख परम सुख के द्वार पर पहुंचाने में निमित्त हो जाता है। चाचा खूब दुख देते थे, वो लड़का घर से भगा, रोटी का टुकड़ा तो चाहिए, निर्दोष लड़का धर्मदास के चरणों में जा पहुंचा। धर्मदास ने उसको 5 गाय दे दी तो चराया कर और रोटी मिल जाया करेगी। लड़के के जीवन में बस और चाहिए क्या, रोटी चाहिए थी। गाय चराता है और रोटी पाता है, चलता रहा सिलसिला, गाय चराना, रोटी खाना और दूध पीना, धर्मदास को सुबह शाम प्रणाम करना, ठाकुर जी के दर्शन करना। लेकिन उसके हृदय में भगवत भक्ति में थोड़ी बहुत प्रवृत्ति होने लगी। भक्तों के संग से थोड़ा बहुत सत्संग आदि कहीं कथा कहानी मिली होगी बचपन में, कि वो कृष्ण कन्हैया है, मक्खन चोर है, वो मेरी जाति का है, वो भी गाय चराता था, मैं भी गाय चराता हूं, भगवान में मेरापन हो गया, वो भी आहिर मैं भी आहिर, तू भी आहिर मैं भी आहिर, कन्हैया लोग चाहे तुझे भगवान माने लेकिन तू है तो यार मेरी जाति का। भगवान को अपनी जाति का मानना ये भी हिम्मत चाहिए। देह को मैं मानोगे तो भगवान को अपनी जाति का मानना अपराध हो जाएगा, लेकिन अपने को आत्मा मानोगे तो भगवान तुम्हारी जाति के सिवा और किसी जाति के नहीं हो सकते। भगवान तुम्हारी जाति के सिवा और किसी जाति के नहीं हो सकते कि बाबा जी हमारी जाति तो ब्राह्मण की है। नहीं, ये तुम्हारे शरीर की जाति है, हमारी जाति तो बनिया है फलाना है, तुम्हारी जाति है नहीं, ये तो शरीर की जाति है, तुम्हारी जाति आत्मा है, आत्मा अमर है और परमात्मा भी अमर है, आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के हैं, तुम सच पूछो तो भगवान की जात के हो, ईश्वर नी नात ना छो, ईश्वर सत्य छे तमे पण सत्य छो, ईश्वर ज्ञान स्वरूप छे तमे पण ज्ञान स्वरूप छो, ईश्वर आनंद स्वरूप छे तमे पण आनंद स्वरूप छो, तुम्हारी मति अने मन जेम तमारा अभिमुख थाय छे तो इमने अंदर थी ज्ञान मळे छे, आनंद मळे छे, अने जेम इंद्रिय ग्राम मा भटके छे एम एमने खिन्नता मळे छे। जो जो तुम्हारा मन और इंद्रियां तुम्हारे अभिमुख होते हैं त्यों त्यों उनको ज्ञान आनंद मिलता है, और जो जो इंद्रियां विकारों के तरफ जाती है त्यों त्यों थकती है, खिन्न होती है, फिर रात्रि को अनजाने में इंद्रियां मन में लीन होती और मन बुद्धि में, और बुद्धि तुम आत्मा के तरफ आती तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा रोज का सिलसिला है। मेरे गुरुदेव तो कहा करते थे कि किसी को भगवान नहीं मिले हैं ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई नहीं कि जिसको भगवान नहीं मिलते हो, रोज भगवान मिलते हैं। आप लोग रोज भगवान का दर्शन करते हैं, खुले आम बाबा जी सबको हजारों लोगों को कहते थे कि आप रोज भगवान का दर्शन करते थे। हर आदमी हर रोज भगवान का दर्शन करता है, अगर भगवान का दर्शन न करे तो वो जी ही नहीं सकता। लेकिन उस दर्शन के बीच अविद्या का पर्दा है, इसलिए पता नहीं चलता कि यही है। इंद्रियां मन में लीन होती है, मन बुद्धि में, और बुद्धि आत्म परमात्मा के करीब शांत, और बुद्धि और परमात्मा के बीच जो अविद्या का पर्दा है। जैसे बच्चा माँ के गोद में जा गिरता है तो माँ का शरीर और बच्चे के शरीर बीच में माँ और बच्चे के वस्त्रों का पर्दा है, ऐसे ही संस्कारों का पर्दा है। इसीलिए परमात्मा होते हुए हर रोज उसकी सत्ता स्फूर्ति लेते हुए भी आज तक हम उसके दर्शन से लाभविंत नहीं हुए। कबीर ने ठीक कहा, सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी, पानी बीच मीन प्यासी। वो सत चित आनंद स्वरूपेश्वर होते हुए भी हम असत संसार में, असत इंद्रियों के पोषण में, असत वाहवाही में बह जाते हैं। बड़े बड़े साहब पैदा हुए, बड़े बड़े खान पैदा हुए, बड़े बड़े उपदेशक पैदा हुए, बड़े बड़े सुधारक पैदा हुए और नष्ट हो गए, कोई जानता तक नहीं। लेकिन उन महापुरुषों को हम भूलते नहीं जिन्होंने इंद्रिय ग्राम को वश करके उस पर्दे को हटाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उन पुरुषों को हम याद करते हैं। हमारी इंद्रियां धोखा दे देती है, छोटे से पद में से प्रमोशन हो जाती, जरा सा ऊंचा पद मिलता तो हम समझते कि चलो अब यही ठीक है। साधना तो करते हैं, आशीर्वाद मिली, बाबा जी ने कह दिया अच्छा हो जाओगे, हो गए, बस अब क्या है। सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, इन खिलौनों में कब तक खेलोगे। इन पद से गिराए जाओ या इन पद को छोड़कर मरो, उसके पहले आत्म पद पाने के लिए तत्पर हो जाओ, ये गुरु का संदेश है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग सत्य स्वरूप आत्मा का संग, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सुविधाएं एयर कंडीशन की मिल गई तो क्या, कारों पे कारें मिल गई तो क्या, सलाम मारने वाले ऑफिसर मिल गए तो क्या, और आरती उतारने वाले भक्त मिल गए तो क्या। अरे दुनिया के सबसे ऊंचे में ऊंचे अधिकारी भी तुम्हारे है अंडर हो गए, तुम इतने बड़े अधिकारी हो गए, ततह किम उससे क्या हो गया। बड़े बड़े राजा तुम्हारे नौकर हो गए, सेवक हो गए, और बड़े बड़े धनाढ्य तुम्हारे सेवक हो गए, फिर भी तुमने आत्मपद नहीं जाना तो तुम कंगाल के कंगाल रहोगे, क्योंकि ये सब चीजें यहीं धरी रह जाएगी। जिन चीजों से इस शरीर को अनुकूलता मिलती है वह शरीर भी यहीं जलाया जाएगा। शरीर राख में जल जाए उसके पहले अपने अहंकार और वासना को मिटाकर परमात्मा से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो भगवान कहते हैं, संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इंद्रिय ग्रामों का संयम अनजाने में उस गरीब दास का हुआ। शिष्य था गरीब, नाम रख दिया गरीब दास। ऐ गरीब दास, गाय चराने ले जा, लेकिन देख ध्यान से सुन, आज भोजन के लिए इधर मत आना, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, मारे तो एकादशी है, हत्तू खाए बिना रहेगा नहीं, इसलिए ले ले ये आधा सेर आटा, 20 आलू, आलू सेक लेना कंडों में, समझे। गरीब दास बोलता है समझे। निपट निराला था, निर्दोष हृदय का था, इंद्रियों में विकार नहीं थे और ज्यादा चतुराई भी नहीं थी। धर्मदास ने कहा फिर क्या करेगा समझे, आज एकादशी है, नमक नहीं मिलेगा, आलू कंडों में छाने में सेक कर उनकी छाल उतार देना, और फिर आधा से आटा देता हूं, चार रोटी बनाना, और फिर उस पर ये आलू का सब्जी रख देना, आज राम रस नहीं मिलेगा समझे। गरीबदास बोलता समझे। बोले फिर क्या करेगा, ठाकुर जी को भोग लगाया, समझे? गरीबदास बोलता समझे। ठाकुर जी खाए फिर खाना, समझे? बोले समझे। अब ठाकुर जी सब खा जाएंगे तो? बोला नहीं खाएंगे, समझे सब? बोले हाँ नहीं खाएंगे, समझे सब। शिष्य निर्दोष था, गरीब था, दास भाव से रहता था, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत बेवकूफी भी, जैसे बालक तोतला बोलता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही उसका समझे समझे बोलना भी गरीब दास को, गरीब दास का समझे समझे बोलना धर्म दास को खटका नहीं। बोले अच्छा जा। आधा सिर आटा, आधा सिर बंगाली मना 450 ग्राम आटा, 20 आलू। धर्मदास को दया आई कि बेचारा दिन भर वहां रहेगा, ठाकुर जी को भोग भी लगाएगा, तो ठाकुर जी को भोग हो तो थोड़ा मिठाई होना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ दे दिया। बोले देख, ठाकुर जी को भोग लगाएगा तो फीका फीका नहीं लगाया जाता है, ठाकुर जी रसमय है तो उसको थोड़ा रसीला भोग लगाना चाहिए, आज निमक रस राम रस नहीं तो गुड़ रस ले जा, समझे? बोले समझे गुरु जी, ये तो बहुत समझे हम, लाओ। अच्छा हो गया, गुड़ का ढेला मिल गया। अब बेचारे ने गाय चराई, भूख की तैयारी हुई, उसने इधर उधर से कंडे छाने के, गोबर के कंडे लिए, आलू सेके, आटा गूना। गुरु ने कहा जंगल के पत्ते इकट्ठे करके साफ सूफ करके उस पर आटा रखना, फिर मिट्टी न पड़े ऐसे गूनना आटा, और ये छोटा सा बर्तन है, इसी से पानी ले लेना, समझे? बोले समझे। फिर ठाकुर जी को अर्पण करना, ठाकुर जी खाएं इसलिए 4-5 पत्ते लाकर शुद्ध उन्हीं पर ये टिक्कड़ रख देना, और ऊपर सब्जी रख देना ये आलू की, और थोड़ा सा गुड़ रख देना, और आंखें मूंद के बोलना कि ठाकुर जी आइए पाइए, ठाकुर जी आइए पाइए, ठाकुर जी आइए खाइए पाइए, आइए खाइए पाइए, ठाकुर जी आइए खाइए पाइए, ऐसा ठाकुर जी को रिझाना, समझे? वो बोलता है समझे समझे। अब वो तो गया, गुरु ने जैसा बताया था ऐसा उसने तो कंडे वंडे इकट्ठे किए और आलू को बुने, सेके आलू, आटा गुना, 4 टिक्कड़ बनाए, हाथ पैर धोए, और तो बेचारा बैठा के चलो ठाकुर जी तुम तो मेरी जाति के हो, मदद करने तो नहीं आए, अब तैयार भोजन पर बुला रहा हूं, अब तो आओ। हृदय में विकार नहीं है, इंद्रियों का आकर्षण नहीं है, गरीब दास है, टूटी फूटी भाषा में बोलता जा रहा है, लेकिन अब ऐसे कैसे ठाकुर जी आ जाए, आंखें बंद करके बोलता बैठता फिर निहारता, तो कोई आए नहीं ठाकुर। 11 के 12 बज गए, 12 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बोलता है तुम ऐसे अहिर कैसे, कि एक अहिर भूखा मर रहा और दूसरा अहिर कहीं गायब ज्यादा हो गई क्या तेरी, हो गई तो चरने दे, वो कहीं भाग नहीं जाएगी तो आ जाए, खा ले टिकड़ फिर जाना। उसको पता ही नहीं कि वो ठाकुर जी गोलोकवासी भी हैं, ठाकुर जी अंतरात्मा भी हैं, प्राणी मात्र के सुहृद भी हैं, ये पूरा ज्ञान इसके पास नहीं था, केवल इंद्रिय संयम था और विश्वास यकीन पक्का था बस। जो भगवान को बचता ने बाकी की कमी होती ना तो भगवान पूरी भी कर देता है। जिसके पास बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन अहंकार है कि मैं बड़ा नॉलेज वाला हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जोगी हूँ, तो उसका बड़प्पन रेतीले तट पर जैसे है, इमारत का कोई भरोसा नहीं, ऐसे उसके बड़प्पन का कोई भरोसा नहीं। जो भगवान को बचता ने बाकी की कमी होती ना तो भगवान पूरी भी कर देता है। जिसके पास बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन अहंकार है कि मैं बड़ा नॉलेज वाला हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जोगी हूँ, तो उसका बड़प्पन रेतीले तट पर जैसे है, इमारत का कोई भरोसा नहीं, ऐसे उसके बड़प्पन का कोई भरोसा नहीं। और कोई बड़ा है नहीं बाहर से, इन सच्चे हृदय से भगवान के शरण है और इंद्रिय संयम है, तो कितना भी छोटा हो लेकिन वो बड़े से बड़े लोग जो चीज नहीं पाते वो ऐसा आदमी पा लेता है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भगवान के साथ उसका निर्दोष भाव से संबंध है। वो शाम के 4 बजे हैं, भूख लग रही है, लेकिन अब गुरु ने कहा है, उसको पता नहीं कि बेईमानी से भोग लगाया जाता है, उसको पता नहीं कि दिखावटी भोग लगाया जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, ये पुजारियों का मंत्र नहीं पढ़ा था, वो तो पक्का मंत्र पढ़ा था कि ठाकुर जी को खिलाकर खाइयो, नहाकर नलाइयो, खिलाकर खाइयो, धन्ना जाट की नाई। इसने भी गांठ बांध ली। 4 हो गए महाराज, 4:15, अब सूर्य ढलने को दिख रहा है कि ये क्या मेरे को भूखा मारोगे, आखिर तुम इतने कठोर क्यों हो, क्या तुम्हारे को आज सब्जी वब्जी नहीं है, राम रस नहीं, इसलिए नहीं आ रहे हो। लेकिन मैं क्या करूं, गुरुजी ने जो दिया है वही तो दे रहा हूं, अब मैं दूसरा लाऊं कहां से। आ जाओ देर मत करो, भूखे ठीक नहीं, ज्यादा भूखा मरे। इसे करते करते हृदय पिघला है, प्रार्थना करते करते अनजाने में इंद्रियां मन में लीन हुई है और मन बुद्धि में तल्लीन हो गया, हर बुद्धि बुद्धिदाता को प्रकट करने में सफल हो गई है अनजाने में। एक छोटा सा 12 वर्षीय घिंगरूले बाल वाला चरावा आया है और रोटी लेकर खा रहा। अब आंख खोल में तो खा रहा हूं कि खा तो रहा है, लेकिन मेरे लिए रखना, मैं भूखा हूं। समझे, ठाकुर बोलता समझे। एक रोटी खाई ठाकुर जी ने, साख ठाकुर जी तो चल दिए, जाते जाते कह गए कि अगली एकादशी को जरा आटा ज्यादा लाना, मैं भी आऊंगा, ठाकुरानी को भी लाऊंगा, बड़ा मजा आया है मेरे को। समझे, वो बोलता है समझे, तुम समझे, टाइम से आना। हाँ, आज परेशान किया, ऐसा अगली एकादशी को परेशान मत करना, समझे। ठकुरानी को लाना हो तो लाना, नहीं तो तुम अकेले ही चले आना, समझे। ठकुरानी के कारण देर मत करना, समझे। ठकुरानी के चक्कर में मत पड़ना, हाँ समझे। ये ठकुरानी सारा दुनिया को चक्कर में डाल दिया, तुम उस चक्कर में मत पड़ना, समझे। बोले समझे, लेकिन तू भी समझ के ले आना, समझे। ठाकुर जी को भी मजा आ रहा है समझे समझे में, और ठाकुर जी के भक्त को भी रस आ रहा है। ठाकुर जी देखते देखते अंतर्धान हो गए, वो तो गरीब दास आया, अपना रोज के नियम के अनुसार दिन पूरे हो गए, फटाक से एकादशी आन टपकी, फिर आज एकादशी टपकी। गुरु जी बोलते ले आटा ले जा। बोले आज आटा 3 पाव देना पड़ेगा। क्यों रे, आधा सिर आटा में तेरा पूरा नहीं होता, इधर तो आधा सिर से पेट भर जाता है, क्या उधर भूख लगती है क्या, क्या भूख क्या लगे, एक रोटी तो वो खा जाता है और इस बार वो ठकुरानी को लाने वाला है, समझे। धर्मदास सोचता है कि बेचारा भोला भाला है, भूख ज्यादा लगता होगा तो ठाकुर और ठकुरानी का नाम लेकर ले जाता है, चलो 1 पाव ज्यादा ही दे दो। अभी तक धर्मदास की आंख नहीं खुली और ठाकुर जी धर्मदास की आंख खोलना चाहते। 3 पाव आटा ले गए, आलू तो वही 20 गुड़ का उतना ही ढेला, 2-3 पत्तल के पन्ने हुए और छोटा सा बर्तन लिया। और वो तो गरीब दास बेचारा अपनी गरीबी में खुश है, इंद्रियों के विषय विलास उसके पास है ही नहीं, ज्यादा भोग सामग्री जिसके पास है वो सचमुच आध्यात्मिक जगत में अगर तोला जाए तो वो बेचारा गरीब है। जितना ज्यादा सामग्री और सुविधाएं हैं वो बेचारा आत्मधन की दुनिया में गरीब है, और जिसके पास कम सुख सुविधा इंद्रियों के भोग है वो आध्यात्मिक जगत में अमीर है। श्री राम, भारत देश आध्यात्मिक जगत में अमीर है और स्विट्जरलैंड गरीब है। नारायण नारायण नारायण। जिन देशों में इंद्रिय विकारों को भड़काने वाले साधन ज्यादा है वे देश आध्यात्मिक शांति में बिल्कुल आपको दरिद्र दिखेंगे ही, कोई शक नहीं इस बात में, मैं घूम के आया हूं। आध्यात्मिक शांति में वे दरिद्र दिखेंगे, उन देशों के बच्चे या बड़े लोग इतनी संख्या में शांति से बैठ नहीं सकते। अगर 5 बच्चे भी हों इस इतनी सभा में तो सभा डिस्टर्ब हुए बिना नहीं रहती। बड़ा कंट्रोल करना पड़ता, बड़ी कथाएं सुनानी पड़ती, बड़ी डांट, मीठी डांट देनी पड़ती, तभी जाकर परदेश की कथाएं चलती। नहीं तो बच्चे हो 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 उठ बैठ ये वो। इंद्रियों को जितने विषय विलास और सुविधाएं मिलती है उतनी वे बलवान होती और जीव को दुर्बल बना देती है। ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी बात में जल्दी सुसाइड कर देंगे क्योंकि दुर्बल जीव हैं। थोड़ी थोड़ी बात में अशांत हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज पर आकर्षित हो जाएंगे। समझे समझे। नारायण नारायण नारायण। दूसरी एकादशी फटकी तो गए कि आज तो ठाकुर भी आएंगे ठाकुरानी भी आएंगे। खैर कोई बात नहीं, पाव भर आटा जो ज्यादा है। हर आज उसने तो बनाए टिकट, 4 बनाता था आपके 6 बनाए और जरा जरा गुड़ डाल दिया, आलू का भुट्टा डाल दिया। आओ मेरे दीन दयाल मेरे ठाकुर, आओ आओ ठाकुरानी को भी लाओ लेकिन 2 रोटी से ज्यादा मत खाओ। आओ मेरे ठाकुर आओ। ठाकुर आए हैं, ठाकुरानी भी आई है, 2 रोटी उन्होंने एक एक ली है। अरे गरीब दास, बोलो ठाकुर अब फिर एकादशी को आना पड़ेगा आपको? बोले मैं तो आऊंगा लेकिन अब 1 पाव आटा और ज्यादा लेना। आपकी बार तो मैं 2 ठाकुरानियों को औरों को भी लाऊंगा, सुभद्रा और सत्यभामा को भी लाऊंगा, इसलिए इतने आटे से नहीं चलेगा। वो बोलता है मैंने तो आपको निमंत्रण दिया है, आपके परिवार को थोड़े निमंत्रण दिया है। आप सबको रोज लाते फिरोगे तो मेरा पूरा कैसे होगा? बोले नहीं तो शेर भर आटा लाना, हो जाएगा पूरा। अच्छा लेकिन तुम टाइम सर आना, समझे? ठाकुर जी बोलता है समझे, तू भी टाइम सर खाना बनाना, समझे? हम भी टाइम सर आएंगे, समझे? बोलता है समझे। कैसा निर्दोष हृदय के ठाकुर जी को भी दिल लगी किए बिना रहा नहीं जाता, ऐसा कैसा दिल होगा। कबीर जी ने ठीक ही कहा है। कबीर जी कहते हैं भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। इससे तो गेवार अच्छा, जिसको जगत की माया नहीं घुसी, और जगत की माया नहीं घुसी तो मायापति जल्दी से प्रकट हो जाते। भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। गरीब दास तो बेचारा फिर देखता है कि एकादशी आ फटकी, गुरुजी अब तो 1.5 पाव से काम नहीं चलेगा, अब तो आटा ज्यादा दो। ले क्या है तू आटा ज्यादा क्या करेगा, बेचता है, लोभी हो गया कि छुपा के आता है फेंक देता है। बोले तुमने जो लगा दी उसको आदत, ठाकुर भी आया ठाकुरानी भी आया, अब बोलता है 2 प्राणियों को औरों को लाऊंगा, प्राणियों को। ले नहीं ये सब तेरी गड़बड़ नहीं चलेगी, ले जा आटा। गुरु ने 1.5 पाव 1.25 शेर, आधा शेर और 1 पाव 1.25 शेर आटा दे दिया। तो बेचारा गया बोले लो हमारा आटा तो बढ़ा नहीं और उनकी जमात बढ़ती रहती है, अब कब तक खिलाते रहेंगे, हम भूखे रहे। चलो फिर भी ठाकुर को तो खिलाना ही चाहिए। समय हुआ, अपना पत्तल पर आटा गुना और बुट्ठा बनाया, गुड़ के टुकड़े टुकड़े डाले, आंखें मूंद के बैठ गया कि ठाकुर ठाकुरानी आओ, और प्राणी ना आए तो कोई बात नहीं, केवल तुम दो ही आ जाओ। देखता है थोड़ी देर में 2-4 चारों ने एक एक रोटी ले ली, 6 में से तो 4 रोटी चट, बाकी रही 2। अंदर से तो बड़ा तकलीफ हो रही थी लेकिन कहें भी क्या, खुद ठाकुर जी खा रहे हैं, क्या करें, भूखे सूखे सहते हुए कि ठाकुर जी अच्छी बात है। हाँ अब की बार तो ज्यादा नहीं लाना है आटा वाटा, अब की बार तो तुम अकेले आओगे? बोले अकेले नहीं, अब की बार तो मैं सबको लाऊंगा, इसलिए खूब आटा लाना। बोले देखो मैंने तुम्हारे को आमंत्रण दिया है, पूरा तुम्हारे पर इतना झमेले को तो नहीं दिया, और तुम तो आज ये 2 रानियों को लाए, तुम्हारे पास रानियां कितनी ये भी समझ में नहीं आता, कितने प्राणी तुम्हारे पास है, मित्र कितने पास है। बोले इस बार मैं अपने सुदामा और मनसुखा को लाऊंगा, उन्होंने ऐसी रोटी नहीं खाई इसलिए। बोले सुदामा और मनसुखा को लाओगे तो मैं भूखा मरूंगा? बोले नहीं, तो तेरे लिए थोड़ा बच जाएगा, तो ले आना जरा आटा ज्यादा, टाइम से आना समझे। बोले मैं क्या टाइम से आऊं, तुम भी टाइम से आना और ज्यादा मत आना समझे। जय श्री कृष्ण। इस भोले भगत के बाद कहावत चल पड़ी, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। धर्मदास को तो पता ही नहीं और गरीबदास भगवान के साथ ऐसी अटखेलियां कर रहा है। धर्मदास समझते कि ये तो पागलों की बात करता है, ठाकुर आया, ठाकुरानी आई, मनसुख आया, सुदामा आया, है के मूर्ख है, बेवकूफ कहीं का। अच्छा, अब एकादशी आ तब देखा जाएगा। एकादशी आ फटकी, बोले लाओ फिर आटा। बोले आटा तो दूंगा तेरे को, लेकिन चस्का लग गया है, रोज ज्यादा ज्यादा ले जाता है, गौएं चराता है कि तू चरता है आटे? बोले ना मैं चरता हूं ना गौएं चरती है समझे, वो तुम्हारा ठाकुर ठाकुरानियों को ले आता है समझे, और ठाकुरानियों को भी अच्छी लगे तो ठाकुर के मित्रों को भी ठाकुर लाने वाला है समझे, इसलिए आटा ज्यादा दो समझे। गुरु ने कहा आटा तो देता हूं मैं आपका, लेकिन बिगाड़ मत करना समझे। बोले समझे, बिगाड़ नहीं होता है समझे। बोले बिगाड़ होता है तू समझा? बोले हम तो समझे, तुम भी गुरुजी समझे, बिगाड़ नहीं करते, बेचते नहीं समझे। गुरु ने देखा कि भोला भाला है बेचारा, गरीब दास है, चाचे ने कौए की नाई कें 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 करके इसको मार भगाया है, इसलिए बेचारा अब यहाँ भी थोड़ी कें कें करता है। अभी तक धर्मदास को पता नहीं, कहावत है धर्मदास को पीने की आदत ना होती, मियाँ अंदर बीबी बाहर ना सोती। फिल्म वाले भी धर्मदास का नाम जानते थे, वो कोई दूसरा धर्मदास रहा होगा, लेकिन ये महंत धर्मदास ईस्वी संवत विक्रम संवत 1900 की बात है, विजयकापट्टम दक्षिण की बात। महाराज अब एकादशी आई, गुरुजी ने देखा कि ये तो जिद करके बैठा है कि इतने आटे से नहीं चलेगा, ठाकुर आएंगे, ठाकुरानियां आएगी, उनके मित्र भी आएंगे, इस आटे से क्या होता है, आटा और चाहिए समझे, नहीं तो हम नहीं जाते समझे। गुरु ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा समझे, आटा थोड़ा और भी देता हूँ समझे, लेकिन आज तेरी पूरी खबर रखूंगा समझे। बोले खूब खबर रखो, तुम भी समझे, हम झूठ नहीं बोलते समझे, आटा नहीं बेचते समझे, गाय को नहीं खिलाते समझे, फेंकते नहीं समझे, वो खा जाता है सब समझे, हमको तो रोटी बनाते बनाते दम निकल जाता है समझे। ये एकादशी आके आन फटकती है, गुरु हंसता है उसकी निर्दोषता पर। अच्छा ले, शेर भर आटा दिया, कुछ आलू दिए, वही गुड़ का ढेला दिया, दो चार पत्तले दे दी, पत्ते दे दिए, एक छोटा सा बर्तन दे दिया पानी लाने के लिए। वो तो बेचारा गुरु को श्रद्धा पूर्वक हृदय पूर्वक प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, गरीब दास गायों के पीछे पीछे जंगल में गया, गायें चराते चराते दोपहर होने को है, रोटी बनाया, आज तो रोटी बनाने में जरा समय ज्यादा लगा। उधर गरीब दास छुप कर आकर देखते कि आटा का क्या उपयोग करता है, कौन ठाकुरानी आती है, कौन ठाकुर इसको मिलता है, और ठाकुर के दोस्त कौन आके इसकी रोटी खाते, पागल कैसी बातें बनाता है। धर्मदास पेड़ के पीछे ओथ में छुप गए, देखा कि आटा तो सब गुण रहा है तो वफादार, फिर रोटियां भी सब बनी, तब तक देखते रहे धर्मदास, अब सारी रोटी खाएगा कैसे भूत। सारी रोटियों को रख दिया पत्तलों पर, सेके हुए आलुओं के छिलटे उतार के कूट काट के उसका बर्फा भुना बनाया और थोड़ा थोड़ा रख दिया, गुड़ का ढेला ढेला रख दिया, जरा जरा टुकड़ा 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 रख दिया, जंगल के उस पत्तल के पत्तों पर रोटी सब्जी और गुड़ रख कर वो बेचारा हाथ से थोड़ा प्रक्षालन करके, हे ठाकुर जी अब आओ। धर्मदास देखते हैरान हो गए कि एक आए हैं, बिल्कुल वही ठाकुर जी हैं जो सारे विश्व को आनंद से आकर्षित करते, वही कृष्ण वही राधा वही सत्यवामा वही रुक्मणी वही सुदामा और उनके साथी तो हैं, लेकिन आठ पटराणी 16 हजार इतर राणियां और सब के सब आए और टुकड़ा टुकड़ा लेकर सबने उस भोले भक्त के भोजन का आस्वादन लिया और नृत्य करने लगे। अब ये तो देखता ही रह गया। ठाकुर बोलते अब खा ले टुकड़ा। बोले तुम तो सब खाकर नाच रहे और मेरे लिए टुकड़ा से क्या होगा, तुमको तो नाचना है घूमना है, मेरे को तो गाय चराना है, मेरा क्या होगा समझे। बोले तेरा सब कुछ ठीक होगा समझे। धर्मदास देख रहा है कि ये ठाकुर जी से इतना बेवकूफी से बात करता फिर भी ठाकुर जी नाराज नहीं होते, बात क्या है। धर्मदास भागे भागे तो अंतर्धान लीला हो गई, वो तो देखता रह गया। गरीबदास धर्मदास भागे और गरीबदास के पैरों गिरे के बेटा गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। चेला बोलता खाक शक्कर हो गया, भूखे रहे समझे। वो तो सब खा के नाचता नाचता भाग गया समझे, आटा दूसरा देना पड़ेगा समझे। धर्मदास कहता है कि आटा तो दूसरा क्या दूं तेरे को, मैं तो गाय चराने की सेवा मैं करूंगा और गुरु गादी तू संभाल। बोले ऐसा करके जान छुड़ाओ मत, आटा देने की पहले हाँ बोलो समझे, चलो आश्रम में चलो। धर्मदास आखिर तो भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति किए थे, हृदय पिघला था, अपने को कोसते हुए कि अरे इंद्रिय ग्राम में भटकने वाले मन, सेठों और शाहूकारों की खुशामत करने वाले मेरे मन, बाना तो तूने फकीर का पहना है साधु का पहना है, लेकिन खुशामत तू भोगियों की करता है इसीलिए भगवान तेरे से दूर है। गरीब दास ने बाना साधु का नहीं पहना है, लेकिन न भोगियों की खुशामत करता है न योगियों की चरण रज में नहाता है, लेकिन हृदय की निर्दोषता है और इंद्रियों का संयम है, विकारों ने उसे छुआ नहीं है, निर्दोष हृदय है इसलिए इसका संकल्प जल्दी फल गया। ऐ मेरे मन मैं अब तुझे निर्दोष बनाऊंगा, सेठों के बीच बस्ती के बीच इंद्रियों के सुखों में रमने वालों के बीच रहकर संयम दुर्लभ लगता है और एकांत में संयम सुलभ हो जाता है। अब तो गरीब दास को ये दूंगा, जिस गादी ने मुझे हृदय के सुख से गरीब बना रखा था उस गादी का अधिकारी तो गरीब दास महंत बनेगा और मैं गरीब दास का आज से शिष्य हूँ। घोषणा कर दी जाहिर में उस सज्जन महंत ने, कह दिया पवित्र आत्मा महंत ने, भक्तों को कह दिया। उस मंदिर की इतनी सारी पूजा और प्रतिष्ठा थी कि जितना ठाकुर जी का दर्शन को लोग महात्मा रखते थे महत्व देते थे, उतना ही ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ महंत दर्शन को भी महत्व देते थे। अगर ठाकुर जी के दर्शन हो गए महंत के दर्शन नहीं हुए तो वो मंदिर नहीं छोड़ते थे, महंत के दर्शन करके प्रणाम करके बाद में ही लोग मंदिर की एरिया से अपने कामकाज में जाते थे, इतना आदर रखते थे उस जगह का लोग। बिजी का पट्टम में वह महंत गरीबदास महंत बना, जिसको काके ने कौवे जैसी कैके करके परेशान करके भगाया था, लेकिन इंद्रिय ग्राम संयत था, मन में सरलता और सच्चाई थी, वो उस मंदिर का महंत बना है। और पूर्व का जो महंत था वो सेवक बना है, गाय चराने जाता है, ठाकुर जी को रिझाता है। इंद्रिय विकारी सुख के सुख में जो परेशान है ऐसे भोगियों के संग से बचने के लिए महंत ने गद्दी का त्याग कर दिया। महंत जंगल में रहते हैं, गाय चरा के गौशाला में छोड़ जाते हैं और गौशाला के एक कोने में शांति से पड़े रहते हैं। लोगों को महंत के लिए, भूतपूर्व महंत के लिए तो मान था, लेकिन इस निर्दोष हृदय बचपन से ही भगवान की भक्ति में अनजाने में ही काका की कौकौ से ही भगवान के रास्ते चलने वाले, इंद्रिय संयम से जीने वाले उस गरीबदास महंत के लिए भी खूब आदर था। विक्रम संवत 1900 से ये कहावत चल पड़ी कि गुरु तो गुड़ रह गया चेला शक्कर बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अभागे विषयों ने, इंद्रियों के आकर्षण ने हमको भगवान के सुख से दूर रख दिया है। वाहवाई कान सुनते, इस कान को मजा दिलाने के लिए वाहवाई की आसक्ति से आदमी न करने जैसा कर बैठता है। इस नाक की सुगंध के लिए दुर्गंध युक्त वस्तुएं और परफ्यूम भी आदमी संभाल संभाल कर रखता है और लगाकर अपने को खुश नसीब मानता है। इस लूली को लाड लड़ाने के लिए न जाने कितने रसीले पदार्थ बनाता है, व्यंजन बनाता है। आवश्यकता नहीं होती तब भी दो ग्रास स्वाद की गुलामी में ठोंस देता और बाद में रोग को आमंत्रण करता है। अगर खाने में संयम नहीं हुआ तो पेट का रोग अनिवार्य है। देखने में संयम नहीं हुआ तो जीवन शक्ति क्षीण होना अनिवार्य है। बोलने में संयम नहीं हुआ तो व्यर्थ की शक्ति नाश होना अनिवार्य है। ऐसे पति पत्नी के संबंध में भी संयम नहीं हुआ तो अकाल मृत्यु भी अनिवार्य है। भगवान बोलते हैं के संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय। इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियम में रखना चाहिए। शादी कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि विकारी सुख में अपने को निचो डाले। भोजन कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि स्वाद के गुलाम बनकर अपनी हाजमा शक्ति को बिगाड़ दें। आंखें मिली है उसका मतलब ये नहीं कि व्यर्थ का बार बार विकारी नजर से दृश्य को देखकर अपने को खपा दें। कान इसलिए नहीं मिले हैं, कान तो मिले हैं कि अपने स्वरूप का ज्ञान पाकर भीतर गोता मार के मुक्त हो जाए। कान इसलिए मिले हैं व्यर्थ का सुन सुनकर अंदर में विकार भड़काने के लिए कान नहीं मिले। ऐसे हर इंद्रिय को इंद्रिय ग्रामों को संयत करके जो संबुद्धि होने लगता है, अनुकूलता में भी सम और प्रतिकूलता में भी सम, मान में भी सम अपमान में भी सम, गर्मी में भी सम और सर्दी में भी सम, ऐसा सम रहने वाला पुरुष भूत मात्र का हितेशी होता है। और ऐसे हितेशी पुरुष अपने को तो तार लेते हैं, अपने संपर्क में आने वालों को भी तार लेते हैं। अगर संपर्क में आने वाले सचमुच में मुक्ति मांगते हैं तो उनको मुक्ति का रास्ता दे देते हैं, और भुक्ति मांगते हैं तो भुक्ति का प्रसाद भी ऐसे संयमी पुरुष दे सकते हैं। भगवान वेद व्यास जी महाराज ऐसे संयमी पुरुष थे।
तुम्हारी रग रग पावन हो गई है ना, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है ना, और तुम उसे प्यार कर रहे हो, तुम स्वयं प्यारे हो रहे हो ना। नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे सफल हो वही सब काम। गले का किनारा नाम हरि, ओम पाप का निवारक नाम हरि, ओम ही राम बोले प्यारा नाम हरि, ओम गौरांग का सहारा नाम हरि, हरि ओम पावन पावन नाम सहारा नाम हरि ओ, नरसी बोले वो ही नाम हरि हरि ओ, ओम ब्रह्मा का प्यारा नाम हरि हरि ओ, ओम दिलो का दुलारा नाम पावन पावन नाम हरि ओ, रग रग पावन हो रही है ना, तुम्हारे हृदय में दुल्हारे का दुल्हार भर रहा है ना, जय हो मारा वालुड़ा। जय हो हरि बोल। बंगाल में नाचे, कृष्ण वृंदावन में नाचे, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, तो तुम साबर के तट पर प्यार से कह दो प्रभु तेरी जय हो। पावन पावन नाम हरि हरि।